ओम शांति। मुरली का हेडिंग है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। सहज सफलता की विधि बनाने वाले विश्व परिवर्तन बाप दादा अपने जिम्मेवार बच्चों प्रति बोले, आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गति विधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में विशेष आत्माएं है, इसीलिए ही ये विशेष आत्मा का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है, तो हर एक अपने इस विशेष जिम्मेवारी को अनुभव करते हैं। कितने बड़ी जिम्मेवारी है, सारे विश्व को परिवर्तन करना। न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबर वन है। सभी ब्राह्मण आत्मा के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर वन बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। सुनना सुनाना दोनों बात सदा रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजोरिटी कमी अनुभव करते हैं। सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए दो बातें विशेष महत्व को जानो, एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। स्वयं के प्रति बहुत जानते हो, अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, या अपने से पूछेंगे मैं कौन, तो कितने बातें स्मृति में आएगी। एक मिनट के अंदर अपने कितने सामान याद आ जाते हैं, एक मिनट में कितने याद आते हैं, बहुत याद आते हैं ना, कितने लंबी लिस्ट है स्वयं की महत्व की। तो जानने में बहुत होशियार हो, सभी होशियार होना। सिर्फ अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है, क्योंकि समय पर स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते। अगर सीट पर सेट है तो कोई कमजोर संस्कार चाहे करे, चाहे कमजोर संस्कार चाहे कोई आत्माएं चाहे प्रकृति, किसी भी प्रकार की रायल माया अपसेट नहीं कर सकती। शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने की अभ्यास नहीं होते, तो वह क्या करेंगे, हिलता रहेगा ना। ऐसे ही मन बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट। शरीर को बिठाने के लिए बहुत स्थूल स्थान होता है, और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। तो बाप दादा बच्चों को यह खेल देखते रहते हैं। अभी अभी अच्छी स्थिति अनुभव में स्थित होते हैं, और अभी अभी अपने स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं सकते। तो कोई बच्चे बचपन के खेल बहुत करते हैं, अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्र के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन बुद्धि सदा एकाग्र रहे। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा न कही यह अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सर्वप्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह सम्मान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है, क्या अटेंशन देना है, एकाग्रता स्थित होते हो अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभव ही नहीं होते। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीन प्रकार लगाते रहते हो। इतना समर्थ बना दो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले, सपन में भी सेकंड मात्र हलचल में नहीं आवे। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। ये है आज का तो एकाग्रता की शक्ति के आधार से हम क्या क्या बन सकते हैं, बाबा ने तो स्पष्ट बता दिया। जैसा प्रारंभ में बाबा ने बोला, सभी ब्राह्मण बच्चों को देख बाबा हर्षित होते हैं। और ये छोटा सा संसार क्यों हर्षित होते हैं, ना हर आत्मा विशेष है, तो विशेष इस कारण में है तो उनका मन बुद्धि संकल्प सदा श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ माने विश्व परिवर्तन का जो श्रेष्ठ भूमिका उन्होंने लिया है, इस कारण बाबा ने हर बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं। तो परिवर्तन के लिए बाबा ने बताया जो स्वयं का परिवर्तन और समय का परिवर्तन। स्वयं को पहचानो, स्वयं की बातें सिर्फ सुनना मानना ये नहीं करने का, लेकिन अनुभव में स्थिर हो जा। अनुभव की स्थिर स्थिति में स्थित होते हो तो हलचल नहीं होंगे। और अनुभव की स्थिति में स्थित होने के लिए आसन एक रस भी चाहिए। इसके लिए बाबा ने बोला जैसा स्थूल योगी अगर किसी भी आसन पर स्थिर होकर नहीं बैठते हैं तो हलचल में आते हैं, तो हिलते डुलते रहते हैं। जैसा उस योगी को आसन पर स्थित होना है तो यहाँ भी हम लोग राजयोगी तुम्हारा स्थिति रूपी स्थान होना चाहिए। इस स्थिति रूपी स्थान पर स्थित होते तो लंबा समय एक स्थिति में टिक सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण याद आ रहा है, जैसा वो सूर्य किरण कोई कागज पर पड़े, कोई वस्तु पर पड़े तो 10 साल भी 20 साल भी पड़ रहे कोई उसका परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक लेंस होता है उसमें एकाग्र करते हैं और पॉइंट में वो रश्मि को गिराते हैं तो साथ साथ वो जल जाता है। तो ये परिवर्तन की शक्ति, हमारे मन बुद्धि इधर उधर भटक रहे हैं और हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं उसके स्थिति में स्थित नहीं हो रहे हैं, तो हमारा शक्ति सब बिखर जाता है। दूसरा, जब हम स्थिति पर स्थित होते हैं तो हमारा बुद्धि एकाग्र होता है और कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं। सारे मन बुद्धि संस्कार आधार पर चलते हैं, तो संबंध संपर्क में भी हमारा भाई भाई की दृष्टि बनी रहती है। जैसा महाभारत में एक उदाहरण है, जब अर्जुन को सभी लक्ष्मण का उदाहरण देता हूँ, पांडवों ने पांडव को रूप सबको द्रोणाचार्य ने परीक्षा में लेके गया, जो ऊपर एक पक्षी रखा था और नीचे पानी, तो ऊपर नहीं देखना है, नीचे पानी में उसका छाया देख करके उसको लक्ष्यभेद करना है। तो सभी को धनुष बाण देकर एक एक को उन्होंने परीक्षा लिया। तो इसमें बताया जो नीचे पानी है उसमें देखकर कैसे हम लक्ष्यभेद करें। तो सभी को पूछते रहते हैं जो क्या देख रहे हैं अभी। तो सभी ने बोला पहले को जो ऊपर कोई मछली बोलते हैं, कोई पक्षी बोलते हैं, मछली
मछली।
अच्छा तो ये देख रहा हूँ, और क्या देखते हैं? नासार चारों तरफ मित्र संबंधी सब कुछ दिखाई देता है। तो सभी के हाथ से धनुष बाण लेकर लास्ट में जब अर्जुन के बारी आए तब उनको हाथ में दिया, तो उनको पूछा आप क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने बोला पक्षी देख रहा हूँ, मछली देख रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद पूछते हैं अभी क्या देख रहे हैं? मैं अभी आंखें देख रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद पूछते हैं अभी क्या देख रहे हैं? ना मुझे आप कुछ नहीं दिखा देते, एक बिंदी दिखता है। तो उस टाइम आदेश देते अभी आप लक्षित करो, तो पास हो गए। ये पानी क्या चीज है, बिंदी क्या चीज है, इसको हम ज्ञान के तौर पर देखेंगे तो हमें एक अनुभव होता है ये बिंदी है, वो है सुप्रीम सोल परमात्मा, बिंदी रूप है। और हमारा जो बाबा बोलते हैं ना ड्रामा को बिंदी लगाओ, माने हमारा सारे चारों तरफ से बुद्धि और एकाग्र होकर एक बिंदु में टिक जाए। और पानी क्या है? वो पानी नहीं है, ज्ञान रूपी पानी। क्या हम लोग यहाँ बैठे हैं, और यहाँ बैठे हैं तो बाबा ने सारे हमें ज्ञान पूरा दे दिया, ज्ञान पानी जैसा ही है, और इस ज्ञान के आधार से तुम उनको देखो। तो हम सब ये अर्जुन और हम यहाँ बैठे ज्ञान के आधार से बाबा को देख रहे हैं। जब कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, एक बाबा और मैं बिंदु, बाबा बिंदु मैं बिंदु, तब जाके हमारा लक्ष्य एकाग्र हो जाता है, तब हमारा लक्ष्य भेद होता है। तो बाबा बहुत इसी योगी के लिए बाबा ने बहुत सारे भिन्न भिन्न हमारे आसन बताए, कभी शांति स्वरूप हो, कभी प्रेम के सागर प्रेम स्वरूप हो, कभी आनंद स्वरूप हो, कभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो कैसे हम एकाग्र करें, एक मिनट का एक कमेंट जैसा बताता हूं। पहले सोचे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और शांति के सागर परमात्मा के बच्चा हूं। तो शांति के सागर परमात्मा के बच्चे होने के नाते उनके भी जितना भी प्रॉपर्टी है हमें मिल रही है, तो वहां से शांति के किरणें मुझ पर पड़ रहे हैं, और शांति के साथ सुख शक्ति बहुत सारे खजाना समाये हुए हैं। जब शांति के सागर परमात्मा के पास पहुंच गए तो हम सिर्फ शांति में नहीं है, सारे आत्माएं सब शांत स्वरूप है, और शांत स्वरूप होने के नाते एक बाप के बच्चे नाते हम सभी भाई भाई की दृष्टि में संबंध में रहते हैं। अब शांति तो इसमें जो अर्जुन का हमने निशानी बताया, उसमें अर्जुन के पीछे भी एक तर्कश होता है। वो तर्कश क्या चीज है? समर्थ संकल्प समर्थ शक्ति खजाना की तर्कश है, और वो जो धनुष है ये दूसरी चीज है, ये विधि। समर्थ संकल्प शक्ति की एक बिंदु में लगाओ विधि अनुसार, तो हमारा सफलता सहज प्राप्त होता है। तो हम भी कोई भी कार्य विधि से करें तो हमारा सिद्धि अवश्य ही होगा। अगर विधि थोड़ा गड़बड़ होता है तो हम लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच सकते हैं। तो बाबा ने बताया एकाग्रता की शक्ति से और क्या क्या होता है। तो पहला तो एक बाबा दूसरा न कोई, माने हमारे कोई भी कार्य में मेहनत नहीं होगा, बुद्धि इधर उधर भटकेगा नहीं। दूसरा है हमारे संबंध, जो भाई भाई की दृष्टि संबंध में वृत्ति में सब ठीक रहेगा। तीसरा है स्नेह संबंध की संकल्प में भी किसी के प्रति नफरत घृणा नहीं होगा, कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे, और कर्मेंद्रिय जीत जब बनेंगे तो बाबा ने जगत जीत का सर्टिफिकेट देंगे। तो एकाग्रता की शक्ति से कुछ भी कड़े संस्कार है हम उसको पूरा निर्मूल कर सकते हैं, उसका संस्कार को मिटा सकते हैं। जैसे आतस्कांश का उदाहरण दिया था, जैसा उसमें कागज जल जाता है, उसी प्रकार हमारे जितना भी लगन और मगन होंगे एकाग्रता की शक्ति के आधार से, हमारे अंदर जितना भी बुराइयां कड़े संस्कार है वो भी सारा जल जाते हैं और हम बाबा के लगन में मगन रहते हैं। एकाग्रता की शक्ति से हमारा जितना भी दुश्मन है, बाहर के जितना भी शत्रु है, कोई भी इविल फोर्स शक्ति है, उन सभी को भी हम उसको भी शांत स्वरूप शांति का दान देके उसको भी अपना बना सकते हैं। जितना जितना भी हम आगे बढ़ेंगे तो उतना हमारा कार्य में सफलता प्राप्ति होती रहती है। यहाँ छोटे बच्चे का अनुभव उदाहरण दिया है, छोटे बच्चे नटखट होते हैं और एकाग्र नहीं होता है, अभी अभी देखो एकाग्र, अभी अभी देखो नटखट होता है। तो एकाग्रता माने बाबा ने बोलता है कि तुम्हारा स्थिति का आसन एक रस होना चाहिए, मन बुद्धि के लिए स्थिति रूपी आसन है श्रेष्ठ है। कल नागेश भाई ने बताया था एकाग्रता की शक्ति के आधार पर, एक जानकी दादी का उदाहरण हमें याद आ रहे हैं, जैसा वो यूरिक गैलरी और एक साइकेटिक उन्होंने कुछ बीज को हाथ में एकाग्रता की शक्ति से जर्मिनेट कर दिया, अंकुरित कर दिया, तो वो तो स्थूल चीज है लेकिन आत्मा बहुत सूक्ष्म चीज है, उसको कैसे एकाग्र कर सकते हैं? तो ये तो बाबा की शक्ति है, प्रेरणा है, प्रेरणा की बात नहीं है, बाबा ने जो मुरली में विधि बताते हैं वही कृपा है, वही आशीर्वाद है, वही सब कुछ है। तो उन्होंने एकाग्रता की शक्ति के द्वारा हर एक मन को शांति मिले के सबको शांति के अनुभव कराया, सबका आत्मा को अंकुरित कर दिया। उन्हें तो सिर्फ एक बीज को अंकुरित कर दिया लेकिन दादी परमात्मा शक्ति से सबका मन को एकदम स्थिर कर दिया, सभी ने महसूस किया ये स्थूल शक्ति से साइलेंस की शक्ति सबसे बड़ा है। जो भी साइंटिस्ट होता है, वैज्ञानिक होता है, उन्होंने भी सब इसी आधार पर साइंस के जितने भी शक्तियां उन्होंने इन्वेंशन की है साइलेंस के आधार पर। अगर मन साइलेंस में नहीं जाए तो शायद एकाग्र नहीं हो सकते हैं। और दूसरा एक उदाहरण, मुझे ईश्वर का कृपा कैसे मिलता है, जितना हम बाबा का बात मानेंगे, बाबा का फरमान पर चलेंगे, बाबा का मुरली, ऐसा कृपा तो हम सर पर हाथ रख कर नहीं करते हैं, लेकिन बाबा का एक एक आदेश जो मुरली में आता है सवेरे, तो उसको हम मानकर चलेंगे और सारा दिन मनन चिंतन करते रहेंगे, मन बुद्धि वहीं पड़े रहे, पहले वो स्थूल कार्य करते रहे लेकिन हमारा मन एकाग्र होता है। एक शास्त्र में उल्लेख है, मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति ग्रीं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। हाँ, मुकं, इसके आधार पर मुख अर्थात जो गूंगे बात नहीं कर सकते हैं वो तो परमात्म कृपा से वाचाल अर्थात बहुत पंडित बन जाते हैं। पंगुं लंघयति ग्रीं, पंगुं मतलब जो लंगड़े, वो बिना के हिमालय क्रॉस करके चला जाता है। तो इसका अर्थ है ये नहीं जो गूंगा एकदम पंडित बन जाएंगे। कालिदास आपके सामने एक उदाहरण है, पहले जीवन में कितना पंडित थे, पंडित तो नहीं थे, उसके उल्टे शब्द में गुद्दू। तो उन्होंने उनका जो पत्नी ने सरस्वती को एक करके उसका कृपा देके उसको महापंडित बना दिया कालिदास, अभी उसका शास्त्र भी लोग पढ़ते हैं, पंडित बन गए। तो कालिदास का एक ये है उदाहरण देता हूं, वो कैसे सभा का पहला पंडित बन गए, नवरत्न सभा थे विक्रमादित्य के। तो एक छोटा सूखा पेड़ सामने पड़ा था, तो सभी को बोला इसका संस्कृत में आप सभी इसको विवरण दो। सभी ने बोला शुक्लं काष्ठं तिष्ठति अग्रे। तो जब कालिदास का वारी आए तो उन्होंने बोला नीरस तरुवर पूरत भागे, अर्थ एक ही है। उन्होंने सभी बोला सुखाकाठ सुखा लकड़ी सामने पड़े हैं। इन्होंने बोला जिस पेड़ में रस नहीं है और वो विराट तरुवर माने वृक्ष के सबसे ये है, नीरस तरुवर पूरत माने सन्मुख सन्मुख पड़ा है, तो सभी ने तालियां बजाई। तो इसका अर्थ है तो हमारा मन बुद्धि एक लगन में मगन रहे तो हमारे उसके अंदर भी अलंकार प्राप्त होता रहते हैं, जैसे बाबा बोलते हैं ना दिव्य गुण में सज जाते हो। तो हमारा जीवन भी ऐसा, जीवन शैली भी परिवर्तन होता है। तो इसमें बताया जो भाई भाई की दृष्टि कैसे बनता है एकाग्रता के, तो मैंने चिंतन किया एकाग्रता भाई एकाग्रता से भाई भाई की दृष्टि सबके प्रति कैसे होगा। जब हम यहां से ऊपर जाएंगे परमात्मा के पास, वहां तो सभी आत्मा आत्मा भाई भाई है, एक बात की चिंतन है, तो सबके प्रति हमारे भाई भाई की दृष्टि होता है। और जब संबंध में आता है तो सबका सम्मान प्राप्त होता है, हम उसको रेस्पेक्ट देते हैं तो वो भी मुझे रेस्पेक्ट देते हैं। तो सिर्फ एक फायदा नहीं है, बहुत सारे फायदा, एक शक्ति में सारे शक्ति समाये हैं। तो और तो बहुत सारे है लेकिन आज और दो मैं समर्पण करता हूँ,
एक दो उदाहरण कोई एक आधा उदाहरण और बता दो।
मुरलियों के पॉइंट्स तो बहुत सारी हैं, परंतु जब तक मन एकाग्र नहीं है तब तक हम उसे संपूर्ण रूप से धारण नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। इस मुरली में बाबा ने कहा एक है सुनना, एक है जानना और एक है अनुभव करना। तो सुनते तो सब है, ज्ञान पता भी सबको है, परंतु थर्ड स्टेप है उसका अनुभव करना। अनुभव के लिए एकाग्रता की शक्ति बहुत जरूरी है। एकाग्र मन हो जाए तो एकाग्र मन से, जैसे कहा उदाहरण कागज भी जलने लगता है लेंस के द्वारा, तो जब तक हमारा मन हमारा चित्त एकाग्र नहीं है तब तक हम किसी भी बात को पूर्ण रीति से समझ नहीं सकते। हमारी जो एकाग्रता है उसका मुख्य एक लक्ष्य है कि हम अपने आप को आत्मानुभव करें, और देह भिन्न है, ये जो अलग अलग अनुभव करे दोनों को, आत्मा अलग और मैं अलग, शरीर अलग और आत्मा अलग, जब तक ये भिन्नता अनुभव नहीं होगी हम इस पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो एकाग्रता की शक्ति, जैसे बाबा ने यहाँ पे बहुत सारे उसके फायदे गिनाए, मन एक रस स्थिति बन जाती है एकाग्रता से, एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभव होता है एकाग्रता की शक्ति से। मेहनत से मुक्त होते हैं एकाग्रता की शक्ति से, सहज निर्विघ्न बनते हैं एकाग्रता की शक्ति से। दृष्टि और वृत्ति, हमारी दृष्टि भाई भाई की होती है एकाग्रता की शक्ति से, वृत्ति सभी के प्रति शुभ भावना, और सातवां बताया कि हर एक कर्म संबंध में भी हर एक के प्रति समान और सम्मान। तो ये कुछ फायदे यहाँ बाबा ने गिनाए हैं कि जब मन एकाग्र होता है तो ऑटोमेटिक उसमें बहुत सारी पावर आने लगती है, जब मन बिखरा होता है तो उसमें उतनी पावर नहीं होती है। हमारा लक्ष्य है पावरफुल बनना, हमारा लक्ष्य है अपने आप को एकाग्र करना, वो योग में भी एकाग्रता हो, ज्ञान में भी एकाग्रता हो, हमारी जो धारणाएं हैं, जो दिव्य गुण है, जब तक हमको ये ना पता चले कि ये दिव्य गुण मुझ में नहीं है तब तक हम वो अपने अंदर धारण नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ये स्मृति, ये अनुभव कि ये मुझ में नहीं है, और फिर उसके ऊपर काम करना एकाग्रता से, तो वो धीरे धीरे धारण होगा। और अंततः कर्मों में एकाग्रता, कई लोगों का योग बहुत अच्छा है, ज्ञान भी सुना सकते हैं, परंतु जो उनका कर्म है उसमें गलतियां होती रहती है। तो कल कर्म में कुशलता आना ये योगी के लक्षण है, कोई भी कार्य हो उसमें कुशल हो जाना ये तभी संभव है जब हम संपूर्ण एकाग्र हो जाते। तो चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे सेवाओं में, चारों ही जगह योग एकाग्रता की आवश्यकता है। ज्ञान सबसे पहले अगर देखा जाए तो रोज की जो मुरली चलती है चार पेज। कई बार ऐसा होता है कि हमको अगर कोई पूछता है कि मुरली में क्या था, तो हमें बहुत कम याद रहता है उसमें का, बहुत कम। और जब तक वो पॉइंट्स याद नहीं, तब तक हम उसका स्वरूप कैसे बनेंगे? जब हमको बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है, तो वो दिनचर्या में आएगी कैसी वो बातें? तो मुरली होने के बाद, मुरली जैसे फिनिश होती है, उसके बाद उसमें मुख्य क्या क्या पॉइंट्स थी, एक याद करने का अभ्यास करना तुरंत, जैसे नाश्ता कर रहे हैं तब, या मुरली जैसे खत्म हो गई उसके तुरंत बाद उसकी जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स है वो याद करने का प्रयत्न करना। या फिर छोटी सी, बहुत बड़ी डायरी में लिखने के अलावा बजाय मैं कहूंगा कि छोटा सा एक कागज पे तीन चार ही मुख्य पॉइंट्स लिख दे। जैसे आज की मुरली में देह के लिए है, देह के फैशन के बारे में है, देह से प्रेम ना हो, देह में फंसने से क्या क्या होता है, नाम रूप में फंसने से क्या क्या होता है, तो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हमारी बुद्धि में हो। जैसे कल नागेश भाई कह रहे थे ना कि अगर दादी को कोई कहता है कि वही तो मुरली है, तो दादी ऐसे आग दिखा देते या बाबा आग दिखा देते। वैसे हर दिन की मुरली अलग अलग है, हमको उसमें से कुछ ना कुछ निकालना है, मेन पॉइंट, मुख्य पॉइंट, क्या क्या पॉइंट है, तो उसके लिए एकाग्र चाहिए बुद्धि। और एकाग्र हो सकती है, ये तो हम बाबा के कमरे में बैठ के योग भी करना है, पर कभी कभी हम बाबा के कमरे में बैठ कर मुरली की पॉइंट्स भी याद कर सकते हैं, या कभी जो बीच का जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है वहां पर भी वो 3 मिनट में कुछ तो मुख्य पॉइंट्स हमको याद आ जाए। जैसे कोई वरदान में बाबा ने जैसे कहा आज, जैसे चैतन्य बोर्ड हो जाओ, तुम्हारा बोर्ड हो जाए, एक ही पॉइंट याद है, पर वो सबसे मुख्य पॉइंट है उस वरदान की, तो जैसे वो। या फिर शाम का योग भी करते हैं तो कभी कभी वो, और या सबसे मुख्य बात है प्रकृति के सानिध्य में जितना हम जाएंगे उतना मन एकाग्र होता है। तो ज्ञान में एकाग्रता का अभ्यास, दूसरा है योग में एकाग्रता का अभ्यास। योग में बैठने के बाद कितना समय लगता है हमको आत्मिक स्वरूप में स्थित होने को, किसी किसी को 1 घंटा, किसी किसी को उससे भी ज्यादा लग सकता है, क्योंकि पहले तो बुद्धि को एकाग्र करना होता है, बुद्धि यहां वहां भटक रही है, दिनचर्या की कितनी सारी बातें हैं वो सारी याद आती है, वो सब एक तरफ करके जितना जल्दी हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं उससे हमारे योग की कुशलता पता चलती है, उसमें भी एकाग्रता की आवश्यकता है। तो कितना जल्दी हम अपने आप को देह से डिटैच करते हैं, दिखाया है मेडिकल फील्ड में कि सबसे पहला ऑपरेशन इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति का हुआ था जो कि विदाउट एनेस्थीसिया हुआ था 1915 में, काशी का जो महाराज था उसका पेट का ऑपरेशन था। तो डॉक्टरों ने कहा कि ये 2-2.5 घंटा ऑपरेशन चलेगा, तो उसने कहा कि मुझे कोई भी भूल सुन, जिसको एनेस्थीसिया कहते हैं, बिना एनेस्थीसिया करो, तो बोलते ये तो असंभव है, अगर किसी व्यक्ति का पेट काटा जाए बिना एनेस्थीसिया के तो चिल्लाएगा, रोएगा, चीखेगा जोर जोर से, असंभव है, कर ही नहीं सकते। उसने कहा नहीं करो, मुझे एनेस्थीसिया नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहता है मैं ऐसी ध्यान की विधि जानता हूं कि जिससे मैं अपने आप को इस देह से अलग करता हूं। तो सबसे पहले 3 ब्रिटिश डॉक्टर्स थे, उन्होंने सबसे पहले उसके हाथ पर प्रयोग किया कि हाथ पर एक चीरा लगाया और देखा कि उसको दर्द होता है या नहीं होता है। तो 2 घंटे तक उसे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, 2 घंटे के बाद उसने कहीं कहा कि थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तब कहीं जाकर वो 3 डॉक्टर जो थे ब्रिटिश, जबकि अविभाजित भारत था और ब्रिटिश का शासन था, तो उन्होंने उसके पेट का ऑपरेशन किया। 2 से 2.5 घंटे तक ऑपरेशन चला, पर उसने बिल्कुल आवाज तक नहीं किया। तो वो कितनी एकाग्रता की शक्ति है कि एकाग्रता से स्वयं को शरीर से इतना डिटैच कर दिया कि वो शरीर को काटा गया, ऑपरेशन पेट का, उसको काटना और उसके अंदर डॉक्टरों ने काम किया उसके पेट के साथ, उनके अंतड़ीय के साथ, और फिर उसको सिलाई भी किया। ऑपरेशन पूरा हुआ उसके बाद में उसने कहा अभी थोड़ा सा दर्द हो रहा है बस। तो ये जो है केवल बाबा, संसार में भी द्वापर से ऐसे कुछ महान आत्माएं हुए हैं कि जिनके पास एकाग्रता की एक परम शक्ति थी, कि जिस शक्ति से उन्होंने, चाहे वो किसी भी प्रकार का ध्यान करते थे, चाहे वो हठ योगी क्यों ना हो, परंतु वो एकाग्रता की शक्ति ही थी कि जिससे इस, ये जो काशी नरेश है, जिसने अपने आप को उस देह से अलग कर दिया। तो मैंने जैसे कल भी कह रहा था कि हमारा योग कितना है ये बीमारी के समय पता चलता है, बीमारी के समय कौन कितना स्थिर रहता है, एक हो जाता है, इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है किसी किसी में, अभी वो योग कहाँ चला गया, वो 2 बजे से उठ के योग लगा रहे थे, वो ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, वो सब कहाँ चला गया, वो एकाग्रता की शक्ति वहां थी ही नहीं। तो मुख्य है हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो इतनी एकाग्रता से करें कि वो ज्ञान, वो योग, वो जो शरीर से डिटैच होने की हमारी अवस्था है बहुत पक्की हो जाए। मुख्य तो यही है कि हम इस शरीर से कितना डिटैच है। जब तक ये ना होगा तब तक वो योग के दिव्य अनुभव जो बाबा कह रहे हैं भिन्न भिन्न स्थितियां, वो सब नहीं हो सकते। तो योग में एकाग्रता का अभ्यास, धारणाओं में एकाग्रता का अभ्यास, और अंततः सेवाओं में। जो भी हम सेवा करते उस सेवा का थोड़ा सा हमारे मन में प्लानिंग चाहिए कि आज मैं ये सेवा कर रहा हूं। हम क्या बिना प्लानिंग ही अगर सेवा में चले गए तो वहां पे भी हम बिखर जाते हैं। थोड़ा सा सेवाओं में जाने से पहले कि आज मुझे क्या क्या करना है, ये तीन बातें, ये चार बातें, ये पांच बातें, ये इस तरह की मेरी सेवा है, तो उसमें भी मुझे क्या क्या करना है। उस सेवाओं का भी हमको हमारे मन में प्लानिंग चाहिए, एकाग्रता की शक्ति चाहिए, तब हम सेवाओं में भी सफल हो सकते हैं। तो जितना हम एकाग्र होंगे तो हर चीज में एकाग्र होने का प्रयत्न करना है, हर चीज में। इस कॉन्सेंट्रेशन पावर को हमको हर दिन बढ़ाना है, धीरे 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 इतना बढ़ाना है कि हम, बाबा कहते ना मास्टर सर्वशक्तिमान, अर्थात जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उस स्थिति में स्थित हो जाओ, या जो करना चाहो जब करना चाहो उस स्थिति में तुरंत आप कर सको वो बात। तो ये सारी जो पावर्स आएगी कॉन्सेंट्रेशन पावर से आएगी। हम लोगों को सिखाते हैं ना कि मेडिटेशन से क्या क्या होता है, उनको ये बात हम सिखाते हैं कि मन एकाग्र होता है, पर क्या हमारा मन एकाग्र है, हमारी बुद्धि एकाग्र है? कोई भी मुरली पढ़ने के बाद हमको अगर तुरंत कोई कहे कि इसका हमको सार सुनाओ तो हम सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि बुद्धि भटकती रहती है। जब हम सुनते भी है तभी भी बुद्धि भटकती रहती है। तो हम हमारी जो सुनने की जो कला है उसको भी एकाग्र करना है, आर्ट ऑफ लिसनिंग जिसको कहते हैं। हर चीज में सीखना है हमको, हर चीज सीखनी है, हर चीज। हम ये तो बाबा ने कह दिया कि आप मास्टर नॉलेजफुल हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब पता है। ये अंदर एक प्यास रहनी चाहिए कि मुझे सब कुछ सीखना है, छोटी 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 चीजें सीखनी है, छोटी छोटी, जिसको मैनर्स कहते हैं ना इंग्लिश में, मैनर्स, छोटी छोटी मैनर्स से पर सब सीखना है। जैसे यहां से मधुबन से बाहर गए तो बाहर लोगों के सामने किस तरह व्यवहार करें वो एक मैनर्स है, वॉशरूम के मैनर्स, कपड़ों के मैनर्स, ड्रेस के मैनर्स, सेंटर पर कहीं जाते हैं तो वहां के मैनर्स, हर चीज। ये चीजों के ऊपर हमारा बहुत कम ध्यान है क्योंकि हम उतने एकाग्र नहीं है। जितनी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी और जिसमें उतनी पावर भरती जाएगी पवित्रता की, उतनी ये सब बातें समझ में आएगी। किसी ने कहा है, विवेकानंद कहता है, द प्योर ऑफ द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल। जितना मन पवित्र उतना उसे वश में किया जा सकता है, उतना उसे कंट्रोल किया जा सकता है, उतना उसे एकाग्र किया जा सकता है। और बिना एकाग्रता की शक्ति से ज्ञान अर्जन हो ही नहीं सकता। विवेकानंद ने एक जगह कहा है, अगर मुझे मौका दिया जाए, चांस दिया जाए कि मैं सारा अपना एक बात करूं, मेरे जीवन में अगर मुझे मिल जाए तो वो मैं चाहूंगा कि पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिल जाए। अगर वो पावर मुझे मिल जाए तो मैं वापस छोटा बच्चा बन जाऊं और अब तक जो ज्ञान सीखा है वापस वही ज्ञान को इस शक्ति से संपूर्ण जैसा वो ज्ञान है उसको ग्रहण कर लूं। तो हमारे पास भी अगर ये पावर है तो बाबा ने अब तक जो कुछ कहा है, इतनी सारी मुरलियां बिखरी पड़ी हुई है, पर हमको एक मुरली, अगर संडे की मुरली में क्या था, उसके पहले क्या था, सुना, शाम तक याद है, दूसरे दिन गया, तो वो उसमें से मुख्य मुख्य धारणाएं हम ले लें और उसको पक्का अंदर बिठा दे और उसके धारणा स्वरूप बन जाए, तो ये काम हो सकता है पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से। उसी से हमें बहुत सारी बातें जो संस्कार है हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कमजोरियां है, पड़ी हुई है कमजोरियां, इतने समय से वो कमजोरी है, पर हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे कि कैसे इससे मैं मुक्त हूं। जब तक फोकस नहीं करेंगे अटेंशन, तब तक उस कमजोरी से मुक्त नहीं होंगे। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का संकल्प करते हैं हम कि मुझे इससे मुक्त होना है, प्रतिज्ञा करते, बाबा को पत्र लिख के देते, परंतु मुक्त नहीं हो सकते उससे। क्यों? क्योंकि माइंड एकाग्र नहीं है। वो एक ही कमजोरी चालू है 10 साल से, 10 साल से एक ही कमजोरी चालू है, और वो एक ही कमजोरी है जो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। वो एक ही ऐसा पक्का कड़ा संस्कार है जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्योंकि हम उसमें फोकस नहीं कर रहे। या तो उसको लिखो, लिखने से भी बुद्धि फोकस होती है, उसको लिखो कि ये एक संस्कार है जिससे मुझे मुक्ति पानी है, फिर उसको बार बार रिवाइज करो कि कैसे मैं इससे मुक्ति पाऊं, बाबा से प्रेरणा लो कि कैसे इससे मुक्ति पाऊं, योग में प्रयोग करो कि जैसे वो कमजोरी है किरने आ रही है वो कमजोरी नष्ट हो रही है, योग में या किसी से पूछो, उसके ऊपर चिंतन करो, प्रकृति के सानिध्य में जाकर उसका चिंतन करो ये सब करने के बाद ही जब बुद्धि फोकस होगी, एकाग्र होगी, तो ही वो कमजोरी नष्ट होगी। नहीं तो वो कागज के उदाहरण की तरह रखी हुई है, किरणें पड़ रही है, सूरज है, परंतु वो खत्म नहीं होगी। वो जब तक लेंस नहीं रखोगे, किरणें फोकस नहीं होगी, वो जलेगी नहीं, वो संस्कार जलेगा ही नहीं। तो इसके लिए हमको ज्ञान में, योग में, धारणा में और सेवाओं में, चारों ही सब्जेक्ट में एकाग्र बनना है। इसके कल दादी ने भी कहा ना, ऐसे कौन समझते हैं कि हमको भावना और भावना और भाव है कि हम चारों में फुल मार्क्स लेंगे, वो हाथ उठाओ, भाषना। तो ये चारों ही सब्जेक्ट में हमको फुल मार्क्स लेने, और चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने के लिए वही स्टूडेंट ले सकता है जिसकी बुद्धि पूर्णतः एकाग्र है। जो स्टूडेंट जितना इसमें, ये नहीं कह सकते कि मेरी तो बुद्धि कमजोर है इसमें, कमजोर कोई कहते ना, हमको तो याद नहीं रहता है, हमारा ऐसा नहीं है। इसमें ट्रेनिंग, अनट्रेन्ड और ट्रेन्ड माइंड की ये कैटेगरी कम बुद्धि वाले और ज्यादा बुद्धि वालों की नहीं है। कोई कहता है हमारी बुद्धि कम है, ऐसा नहीं है। ये बात है ट्रेनिंग की और ट्रेन्ड एंड अनट्रेन्ड, ये कैटेगरी है। किसी ने अपनी बुद्धि को इतना ट्रेनिंग कर दिया है कि वो एकाग्र हो गया, किसी ने अपनी बुद्धि को ट्रेनिंग नहीं किया, इसके लिए वो एकाग्र नहीं है। तो यहाँ बात ट्रेनिंग की, यहाँ बात कॉन्सेंट्रेशन की है, एकाग्र बुद्धि और भटकी हुई बुद्धि की बात है, कम बुद्धि और ज्यादा बुद्धि की बात नहीं है। कोई कहता है हमको याद नहीं रहता है कुछ भी, योग भी ढंग से लगता नहीं है, तो यहाँ बात है एकाग्रता की। तो स्वयं को एकाग्र करना है, उसके लिए भी, उसका भी आधार है पवित्रता की शक्ति। जितना माइंड प्योर है उतना ही वो फोकस हो सकता है। तो ये दोनों ही पावर, प्योरिटी और कॉन्सेंट्रेशन, हमको अपने अंदर धारण करना है। चल ओम शांति। कल मंजूर है।